हरे कृष्णा प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, आप सबका श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रार्थना वंदना अंतर्गत कुंती महारानी की प्रार्थना 8वें स्कंद से कर रहे हैं, उसमें हार्दिक स्वागत है। कल हमने 29वें श्लोक का पाठ करते हुए विराम दिया था। कुंती महारानी भगवान के अवतार और विशेष रूप से कृष्ण अवतार में उसको जो आश्चर्य लग रहा है उनके लीलाओं से, और अन्य भगवान के अवतारों को समझना कितना मुश्किल है, इतना सरल नहीं है, ये बड़ी विडंबना है, तो उस विषय में कुंती महाराज ने कल ये श्लोक कहा था, हमने इसका पाठ किया था। न वेद कश्चित् भगवान् चिकीर्षितम् तव इह मानस्य निर्णाम विडम्नम् न यस्य कश्चित् दयितोऽसि कश्चित् द्वेषश्च यस्मिन् विष्मः मतिर्निर्णाम्। न वेद कश्चित् भगवंस, कोई नहीं जान सकता है भगवान किसके विषय में, चिकीर्षम तव, आपकी लीलाओं के विषय में, कौन सी लीला है, यह मानस्य, जब इस संसार के अंदर धरती के ऊपर मानव रूप में आप आ जाते हैं तो निर्णाम सामान्य लोग उनके लिए बड़ी विडंबना है, वो बड़े मुश्किल में पड़ जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये भगवान है, भगवान कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी जितने बड़े बड़े देवता, श्री कृष्ण 5 साल का से छोटा बच्चा ग्वाल बालों के बीच में एक दूसरे का जूठन खा रहा है, ब्रह्मा जी कहता है वेद में यज्ञ में इसको आहुति देते हैं तब तो खाने आता नहीं है, और ये ग्वाल बालों का जूठन खा रहा है। तो ऐसे बड़े बड़े देवता मोहित हो जाते हैं, तो सामान्य व्यक्ति की क्या बात करें। न यस्य कश्चित् दयितो अस्ति कश्चित्, आपका तो कोई ऐसे विशेष किसी से स्नेह है, प्रेम का पात्र है, ऐसा नहीं है। न द्वेष ही अस्मिन्, और आपका किसी से आप द्वेष करते हैं, कोई आपका दुश्मन है, शत्रु है, ऐसा भी नहीं है। यस विषम विषम मति निर्णाम, परंतु फिर भी लोग आपके विषय में जो विचार प्रकट करते हैं उसमें बहुत बड़ी विषमता है, वो कहते हैं आप पक्षपात करते हैं, आप भक्तों का पास तरफ लेते हैं, आप अभक्तों का को मरवा देते हैं, ये लोगों का कहना है, लेकिन भगवान आप में ऐसा कोई दोष नहीं है। ये कुंती महारानी का श्लोक है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, हे नाथ, हे श्री कृष्ण भगवान, आपके दिव्य लीलाओं को समझना संभव नहीं है, और विशेष रूप से मानव अवतार में ये तो इतनी मुश्किल में डालने वाली है, इतनी भ्रमित करने वाली है, आपका कोई विशेष तो प्रिय है नहीं, न किसी से आप द्वेष करते हो, फिर भी लोग कहते हैं कि आप पक्षपात करते हो। ऐसा प्रश्न परीक्षित महाराज ने भी 7वें स्कंद के आरंभ में पूछा है कि सुखदेव गोस्वामी, ऐसे लगता है कि भगवान इंद्र की रक्षा कर दी, वृत्रासुर को मरवा दिया, इसका मतलब भगवान पक्षपात करते हैं क्या? ऐसा प्रश्न परीक्षित महाराज ने भी पूछा है, और ये सभा में पूछा है युधिष्ठिर महाराज की, तो वहां नारद जी ने इसका उत्तर दिया है कि भगवान किससे पक्षपात नहीं करते हैं, और यहां कुंती महारानी कहती है लोग कहते हैं आप पक्षपात करते हैं। कुंती महारानी तो ये देख रही है कि लोग कहते हैं पांडवों का कृष्ण पक्ष कर लेते हैं और कौरवों का विनाश करा दिया, ये तो सबके सामने है, खुली है, खुला किताब की तरह बात है, अर्जुन के सारथी बने और कौरवों को मरवा दिया, परंतु भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, ये बात समझनी चाहिए। ये और आने वाले 2 श्लोक इसमें ये बात कही गई है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, आपका क्या योजना है, क्या आपकी इच्छा है, मानव रूप में आते हैं, किसी से द्वेष नहीं, प्रिय प्रेम नहीं, फिर भी लोग आपके प्रति नाना प्रकार का अपना विचार प्रकट करते हैं, ऐसे ये बहुत बड़ी विडंबना है। चक्रवर्ती प्रश्न उठाते हैं कि भगवान मान भगवान पूछ से अगर कुंती महारानी पूछे कि आपके विषय में सत्य का निर्णय कौन करेगा, अगर दो पक्ष हो जाएं, एक कहे कि भगवान हमारा है, एक कहे कि भगवान हमारे हमारे हितेशी है, दूसरे कहे कि हमारे ये द्वेषी है, जैसे असुर कहते हैं भगवान हमारे द्वेषी है, देवता कहते हैं हमारे हितेशी है, ऐसा अगर विवाद हो जाए तो निर्णय कौन करेगा, तो भगवान कहते हैं कोई नहीं कर सकता है, ये इन दो श्लोकों में बताया जा सकता है। आपकी भगवान इच्छा क्या है, आपकी योजना क्या है, ये मानस्य विशेष रूप से जब आप अब यहां अवतार लेकर आए हो तो क्या करना चाहते हो, क्या आपकी योजना है, क्या आपकी इच्छा है, ये जानना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं जान सकता है। बड़े बड़े ज्ञानों ज्ञानियों के ज्ञान को आप हर लेते हो और एकदम मूर्ख हो जाता है। बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े ज्ञानी आपके विषय में जानने का प्रयास करते करते सब कुछ बेव्यर्थ में बोलना शुरू कर देते हैं। क्या कर सकते हैं आप जब राम कृष्ण के अवतार में आते हो और कैसी लीलाएं करते हो, कोई इसको जान नहीं सकता है कि ऐसा लीला करने से आपका उद्देश्य क्या है। मूर्खों को आपको समझने के लिए प्रयास को निष्फल कर देते हो। आप अपनी मधुर गुणों से युक्त हो और वो मूर्ख उसको सुन समझ भी नहीं सकते हैं, ऐसे आप कर लेते हो। अब जैसे दुर्योधन जैसे कितने महामूर्ख हैं कि भगवान उनकी सभा में खड़े हैं और उसको कहते हैं बांधो इसको, इसको बंदी बना लो। अब बताइए कि श्री कृष्ण साक्षात शांति दूर वन के कौरवों की सभा में खड़े हैं और दुर्योधन कहता है कि इसको बंदी बना लो, ये कितना मधुर कृष्ण जो अपने भक्तों के लिए दूत बन के गया है, संधि दूत बन के गया है, संधि करने के लिए गया है, और वहां मूर्ख दुर्योधन उसकी मधुरता को उसकी भक्त वत्सलता और महानता को न जान के उनको कहता है बंदी बना लो। और वहां कितने विद्वान बैठे थे, वो विदुर को छोड़कर भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणा को छोड़कर द्रोण आचार्य को छोड़कर अन्य कोई कृष्ण के महत्व को समझ नहीं सका। बड़े बड़े विद्वानों का विद्या निष्फल हो जाती है, किसी काम की नहीं रह जाती। लोग आपके विषय में नाना प्रकार के विचार प्रकट करते हैं। यस्मिन विश्वा मतिर निर्णाम, निर्णाम का मतलब मानव, विषम मति का मतलब नाना प्रकार के राय अपना देना, अपना मत देना अलग अलग, किसके विषय में, आपके विषय में। तो लोग आपके विषय में अपना अपना विचार देते हैं लेकिन कुछ नहीं जानते हैं इस विषय में। अब उदाहरण देते हैं, सूर्य है, कुछ ऐसे पत्थर होते हैं सूर्य का प्रकाश पड़ने से बड़े बहुमूल्य हो जाते हैं, सूर्य के प्रकाश से बहुमूल्य हो जाते हैं, तो क्या सूर्य उस पत्थर को बहुमूल्य करता है? नहीं, सभी पत्थरों के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उस पत्थर में कोई ऐसा गुण है कि सूर्य के प्रकाश से बहुमूल्य हो जाता है। ऐसे सूर्य अंधे के सामने प्रकट होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, और चारवाक पक्षी जो है चारवाक पक्षी सूर्य निकलने से बड़ा प्रसन्न हो जाता है और उल्लू बड़ा दुखी हो जाता है, कहता कुछ नहीं अंधकार पड़ा, सूर्य कोई होता ही नहीं, सूर्य नाम की कोई चीज ही नहीं, और चोर डाकू सूर्य निकालने के ऊपर बड़े दुखी होते हैं क्योंकि अंधकार में चोरी। अब सूर्य के प्रति लोगों का, चोर कहता है खराब है, उल्लू कहता है होता ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, और वो पत्थर जो सूर्य के प्रकाश से मणि बन गया वो कहता है सूर्य बड़ा दयालु है, देखो मैं पत्थर था आज मुझे बहुमूल्य बना दिया, चार्वक तो पक्षी कहता है हमारा जीवन धन हो गया सूर्य के प्रकाश से। तो इसमें सूर्य किसी से पक्षपात नहीं करता है, जिसका जो गुण है उस गुण के कारण सूर्य से वो सुख लेता है या दुख लेता है, वो उसका अपना है। तो किसी के साथ सूर्य का पक्षपात नहीं है, वो तो सबके सामने एक ही प्रकाश दे रहे हैं। और जो उनके अच्छे और बुरे गुण हैं उनके अनुसार ही सूर्य का वो सुख या दुख लेते हैं, लाभ या हानि होती है। ऐसे वर्षा होती है, पानी सब जगह बराबर बरसता है, हरियाली जमीन में हरी भरी हो जाती है, पत्थर के ऊपर से पानी सब बह जाता है, समुद्र के अंदर पानी गिरता है, जो पानी समुद्र से ही बादल बनता है वो फिर समुद्र में गिरता है। तो ये बेकार का इतना बड़ा परिश्रम भगवान क्यों करता है, कोई पूछ रहा था, बोला उसके अंदर भी सिप्पी होती है, स्वाति नक्षत्र के जल में मोती बना लेती, वो समुद्र में रहती है, उस वहां भी पानी का काम है। तो ऐसे जिसमें जो गुण है उसमें से वो लाभ ले लेता है। भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते, भगवान सबके सामने एक कृपा एक जैसी, जैसे बरसात की कृपा बराबर बरसती है, सूर्य का प्रकाश बराबर है, ऐसे भगवान की कृपा भी बराबर है। परंतु लेने वाले में जितनी योग्यता होती है उतना ले सकता है, कोई ले सकता है कोई नहीं ले सकता है, उसमें भगवान का कोई दोष नहीं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान की कृपा बद्ध जीवों के लिए सामान्य रूप से वितरण की जाती है, वर्षा हो रही है। अब वर्षा हो रही है, बाहर बर्तन आपका उल्टा पड़ा है, घर में लोटा मटका कटोरा उल्टा पड़ा है, तो कहोगे कि बरा भरा ही नहीं, बरसात इतनी बसी हमारा मटका ही नहीं भरा, उल्टा पड़ा था तो कहां से भरेगा। ये बद्ध जीवों के लिए भगवान की कृपा की बरसात तो निरंतर हो रही है। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, परंतु मानव समाज के बीच में भगवान जैसे अपने आदि द्विभुज श्याम सुंदर कृष्ण रूप में आते हैं तो लोग बड़े विडंबना में पड़ जाते हैं, बड़े मुश्किल में पड़ जाते हैं उसके विषय में, उनकी लीलाओं को जब वो सामान्य मानव जैसे करते हैं तो बड़े बड़े भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण के साथ सीता के लिए विलाप कर रहे हैं तो शंकर जी तो मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये तो भगवान की लीला है, लेकिन सती विचलित होकर कह रही है ये भगवान है जिसकी आप आराधना करते हो, पत्नी के लिए रो रहे हैं। तो ये बड़े बड़े देवता ऐसे मोहित हो जाते हैं भगवान की सामान्य इन लीलाओं को देखकर। तो यहां श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान भले मानव जैसा शरीर में लीलाएं करें और उनकी लीलाएं सामान्य मानव जैसी लगें, लेकिन वो सामान्य नहीं है, वो दिव्य है, वो निरंतर ही भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हैं और भगवान किसी का पक्षपात नहीं लेते। हाँ ऐसे दिखता है कि भक्तों का पक्ष लेते हैं, असुरों का विनाश करते हैं, ये देखने में ऐसे आता है, परंतु फिर भी भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते हैं। और फिर वही चक्रवर्ती पाद जी का उदाहरण दे रहे हैं जैसे सूर्य किसी से पक्षपात नहीं करता है, किसी पत्थर को बहुमूल्य बना देता है, अंधे के लिए किसी काम का नहीं है, तो इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है। अंधकार और प्रकाश ये सूर्य के कारण है, लेकिन सूर्य किसी को अंधकार में रखना नहीं चाहता है, कोई बाहर निकल के सूर्य का प्रकाश ले ले तो किसी को मना नहीं करता। ये दो विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत भाव है, लेकिन फिर भी सूर्य का किसी से कुछ लेना देना नहीं है, सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, लेने वाला कितना लाभ लेता है इसके ऊपर सब निर्भर करता है। अब श्रील प्रभुपाद कहते हैं शुद्ध भक्त जो भगवान के हैं, कुछ लोग मूर्ख ऐसे कहते हैं कि भक्त भगवान को कुछ पूजा देते हैं, ऐसा हिरण्यकशिपु ऐसे कह रहा है, अपने भाई हिरण्यकश्यप के वाराहदेव के हाथों मारे जाने के बाद अपनी माता दिति को और अपनी भाभी को और भतीजों को कह रहा था ये भगवान विष्णु छोटे बच्चे को जैसे टॉफी दे उसके तरफ चला जाए, ऐसे ये देवताओं के तरफ चला गया है। और यहाँ प्रभुपाद जी उसी भाव को लिख रहे हैं कि मूर्ख लोग समझते हैं कि ये जो भक्ति करने वाले लोग हैं ना, ये भगवान को बड़े बड़े कुछ उपहार दे के, कुछ चापलूसी करके, चापलूसी का मतलब उनकी कुछ प्रशंसा करके, कुछ पूजा करके उनको अपने पक्ष में कर लेते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो भगवान की दिव्य अनन्य भक्ति है ना, ये कोई दुकानदारी नहीं है कि कुछ दे के कुछ लेना है, ऐसा भक्तों का भाव नहीं है। और ये भाव ये प्रहलाद महाराज का भाव है। वही प्रभुपाद जी जब ये लिख रहे हैं वृंदावन में बैठ के, तो सातवां स्कंद उनके हृदय में, हृदय के पटल के ऊपर सामने आ रहा है। भगवान कहते हैं कि कुछ मांग लो, प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्ति के बदले में कुछ मांगो तो ये तो व्यवसाय हो जाएगा, मैं व्यापारी नहीं हूं, भक्ति की है, ये मेरा स्वभाव है, मेरा धर्म है, मैं इसी आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ये जो अनन्य भक्त है ये व्यवसाय समाज नहीं है कि कुछ लेना और कुछ देने का काम करता है, कुछ लेन देन का काम नहीं है, ये तो प्रेममयी सेवा है, कुछ नहीं चाहिए। परंतु क्योंकि भगवान की ऐसे भक्त अपने स्वरूपगत सेवा करते हैं, इसलिए वो भगवान की पूर्ण कृपा के पात्र बन जाते हैं। उनके ऊपर भगवान की कृपा जो सबके ऊपर बरस रही है उसका पूर्ण लाभ ले लेते हैं, उनको मिल जाती है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरे जो कुछ भक्त हैं, वो फिर चार भक्तों की बात सातवें अध्याय की प्रभुपाद जी कर रहे हैं, आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्त सब, जो दुख में है, धन चाहिए, जिज्ञासु है, ज्ञानी है, वो भी भगवान के पास जाते हैं, परंतु जैसे उनका काम हो जाता है फिर भगवान को भूल दे जाते हैं। दुख था, भगवान की बड़ी प्रार्थना की, ठीक हो गया, रोग मिट गया, भगवान भूल गए, तो इसका मतलब वो पूर्ण भगवान की कृपा नहीं ले सकते क्योंकि वो शुद्ध भक्त नहीं है, वो मिश्रित भक्त है, मिक्स भक्त है। तो अभी इसमें भगवान की कृपा के ऊपर तो दोष नहीं लगेगा, उनकी भक्ति अधूरी है तो अधूरा लाभ लेते हैं, पूर्ण भक्ति है तो पूर्ण लाभ लेंगे। तो शुद्ध भक्त में और मिश्रित भक्त में यही अंतर है, भगवान की कृपा में अंतर नहीं है। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि भगवान की कृपा बराबर है, लेकिन लेने वाले में कितनी शुद्धता है उसी मात्रा में वो कृपा ले सकता है, और जो शुद्ध नहीं है वो नहीं ले सकता है। इसलिए भगवान की कृपा में कोई पक्षपात नहीं है। भगवान जब इस धरती के ऊपर अवतार लेते हैं तो अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा लेते हैं, और कृपा प्रभुपाद ने लिखा है ऑल मर्सीफुल एनर्जी, अपनी एक माया का अर्थ कृपा है, तो कृपा करने के लिए अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा अवतार लेते हैं। और जब वो लीला करते हैं ऐसे लगता है कि वो भक्तों का पक्षपात कर रहे हैं, उनके ऊपर अधिक कृपा कर रहे हैं, परंतु भगवान की कृपा सामान्य है। ऐसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में देखा जा सकता है कि पांडवों के पक्ष में खड़े हैं, अर्जुन के सारथी बने हुए, कौरवों को एक एक करके चुन चुन के मरवा रहे हैं, ये सब दिख रहा है। फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं वो सारे कौरव सेना के लोग जो भगवान का दर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त किए, उनको तो ऊंच लोक प्राप्त हुए, मुक्त हुए, तो कृपा तो भगवान की उनके ऊपर भी उतनी ही हुई। वो लोग भी भगवान का दर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त किए तो ऊंच लोकों को प्राप्त हुई। तो भगवान ने ऐसे नहीं है कि पांडवों का पक्षपात किया, कौरवों के ऊपर भी पूर्ण कृपा की। जो भगवान का दर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए वो सब मुक्त हुए। तो ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं जो सूर्य में जाके सूर्य के प्रकाश में बैठेगा उसको सर्दी में गर्मी भी मिलेगी, अब ठंडी है बाहर सर बैठेंगे, और और यहाँ उनके जो 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 सूर्य नारायण के बहुत किरणें शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने वाली है वो भी लाभ लेगा। अगर कोई बाहर जाएगा तो लेगा, नहीं जाएगा तो नहीं लेगा, तो इसमें सूर्य थोड़ी पक्षपात है। अब दूसरे श्लोक में कुंती महारानी कहती है, जन्म कर्म च विश्व आत्मन अज्ञस्य अकर्तुरात्मन त्रियम नरेशु यादहसो यद अत्यंत विडम्बनम। आपका जन्म, आपका कर्म, विश्व आत्मा, हे पूरे विश्व के आत्मा, हे भगवान, सर्वव्यापक भगवान, अजस्य, आप अजन्मा है, फिर आपका जन्म होता है, अकर्तुर, आप अकर्ता हैं फिर भी बहुत कार्य करते हैं, स्वयं करते हैं आत्मना, और कभी कभी त्रियन, कभी तो पक्षियों पक्षियों कभी आपका अवतार होता है त्रियन पशु में, जैसे वाराहदेव का नर, कभी मानव में कृष्ण राम जी के रूप में आते हैं, और कभी कभी ऋषिशु नर नारायण ऋषि के रूप में आते हैं, और कभी यादहसु, कभी तो जलचर के रूप में मीन का अवतार ले लेते हैं, और साक्षात भगवान होते हैं, पशु बन जाते हैं, जलचर बन जाते हैं, इतना नीचे आ जाते हैं। तद अत्यंत विडम्बनम, इसके ऊपर जब विचार करते हैं तो बहुत विडम्बना होती है, उल्टा विचार हो जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान है, सर्व आत्मा है, विश्व आत्मा है, वो सूकर की जूनी में आएगा, वो मत्स्य की कूर्मा की जूनी में आएगा, और वैसा ही काम करेगा जैसे मत्स्य करता है, ऐसा ही काम करेगा, धरती को सूंघ सूंघ के ढूंढेगा जैसे सूकर ढूंढता है, लेकिन फिर भी जो भक्त हैं सुखदेव को के कोटि के इनकी महिमा गाते हैं, वो इन अवतारों में भी भगवान के असली रूप को जान जाते हैं, भगवान ये असली है, ये साक्षात है, ये वास्तव में ये जान जाते हैं। इस श्लोक में कुंती महारानी कहती हैं, ये भी निश्चित रूप से विमोहित करने वाला है, विडंबना में डालने वाला है, हे विश्व आत्मा, आप को कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सब कुछ करते हुए दिखते हो, आप अजन्मा हो लेकिन जन्म लेते हुए दिखते हो, और आप जब ऐसे जन्म लेते हो पशु में, मानव में, ऋषियों में, जलचरों में, तो ये बहुत हमारे लिए विडंबना है, आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। हे विश्व आत्मा, आप अजन्मा हो, अकर्ता हो, परंतु जन्म लेके सब कुछ करते हो, कब करते हो, बोलक वारा रूप में भी करते हो, कृष्ण राम के रूप में भी क्रिया करते हो, और जलचर के रूप में भी करते हो, ये बहुत बड़ा विडंबना है। चक्रवर्ती बात लिखते हैं, आपके पक्षपात करते हो कि नहीं करते हो, इसका निर्णय करना और उसको समझना ये बहुत मुश्किल है। आप अकर्ता होकर भी कर सब कुछ कर रहे हो, आप अजन्मा होके भी जन्म ले रहे हो, तो फिर ये आपकी लीलाएं हैं, इसका आनंद लेना चाहिए, इन आपकी लीलाओं का आनंद लेना चाहिए, परंतु परंतु लोग ऐसे समझ नहीं पाते हैं। आप अपना बड़ा आकर्षक अवतार पशु में लेते हैं, मानव में लेते हैं, जलचर में लेते हैं, ये अत्यंत विडंबना है, क्योंकि आप नीचे स्तर पे आ गए, सूकर बन गए, मत्स्य बन गए, तो ये तो बड़ा आश्चर्य लगता है। आप सर्वशक्तिमान है, आप सर्वव्यापक हैं, फिर भी जब आप वाराहदेव के अवतार में आए तो धरती को सूंघ के ढूंढ रहे थे, ऐसे लगता है कि जैसे वाराहदेव कार्य कर रहा है, ये विडंबना है, बड़ी आश्चर्य लगता है, सब कुछ जानते हुए भी, सर्वव्यापक होते हुए भी, सर्वशक्तिमान होते हुए भी आप सामान्य एक जैसे वारहा कार्य करता है, शुक्र कार्य करता है, ऐसे कर रहे थे, जो आपके विषय में नहीं, वास्तव में आपको नहीं जानते, आपके विषय में जो सत्य है उसको नहीं जानते हैं, वो तो हंसेंगे, अरे ये शुक्र की पूजा कर रहे हैं, ये वारहा का उपासना कर रहे हैं। वो जहां कहीं से कोई चीज चली जाए उसको वापस प्राप्त करनी हो तो वारहा की उपासना करते हैं, जो धरती चली गई थी वो वापस लाके देवताओं को दे दी, तो वारहा देव की वहां उपासना होती है, वामन देव की उपासना होती है, जब कोई चीज छीन के ले जाए तो वापस ले ली जाए तो वामन देव की उपासना करते हैं कहीं, तो जो भक्त हैं वो कर लेते हैं, लेकिन अभक्त इस बात को समझ भी नहीं पाते हैं। वो जानते हैं कि आप पशु नहीं हैं, आपके ये कर्म जो है ये सामान्य नहीं है, आप इनसे ऊपर हैं, आप अजन्मा हैं। ये जो विरुद्धाभास है, विरुद्धाभास इसको कहते हैं, दो एक दूसरे के विपरीत गुण आपके अंदर हैं, अजन्मा होते हो, जन्मे हो, अकर्ता हुए हो, सब कुछ करते हो, आत्माराम इसमें सुख ले सकते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं वो इसको समझ सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जन्म कर्म चय मे देवी मे एवं यो वेति तत्वता, वो जानते हैं, लेकिन सामान्य लोग नहीं जान सकते हैं। आप अचिंत्य शक्ति है, आपको समझना दुर्लभ है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान की दिव्य लीलाएं न केवल सबको, सामान्य लोगों को मोह में और भ्रम में डालने वाली हैं, परंतु एक दूसरे के विपरीत भी हैं, विरुद्धाभास है। मानव विचार की सोच सीमित है, दो चीजें हैं, विपरीत एक व्यक्ति में कैसे हो सकती है, अजन्म जन्म कैसे ले सकता है, अकर्ता कर कार्य कैसे कर सकता है। हाँ, वो सबसे प्रेम करता है और किसी से कुछ नहीं कह, किसी से कोई द्वेष नहीं है, ये कैसे समझ में आ सकती है, ये सब विरोधाभास है। भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, विश्व आत्मा है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। वो जब वारहा अवतार में आते हैं पशुओं में, मानव में रामकृष्ण अवतार में आते हैं, ऋषियों में नारायण ऋषि है, मत्स्य अवतार में आते हैं, वह अजन्मा होते हुए ये सब जन्म लेते हैं। श्रुति में तो मंत्रों में वेदों में लिखा है कि जिसका जन्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है, उसको कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, उससे कोई बड़ा नहीं है, वो छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है। तो ये भगवान के विषय में जब कहा हुआ है तो फिर उसने ये सब जन्म कैसे लिया, बड़ा छोटा कैसे हो गया। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, बल क्रिया वीर शक्तियां, या ये श्लोक प्रभुपाद जी ने ये लिखा है, और ये सारे कार्य भगवान की शक्तियां करती हैं, ज्ञान शक्ति, ज्ञान बल क्रिया, ये तीन शक्तियां हैं, परस्य शक्ति विविधई बल क्रिया, ज्ञान बल क्रिया। ये सब बातें बताती हैं कि भगवान के जो जन्म और कार्य हैं वो अचिंत्य हैं, वो हमारे मन बुद्धि और इंद्रियों की पहुंच से परे हैं। भगवान के लिए सब कुछ संभव है, भगवान ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको समझना भी हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए ये समझना चाहिए कि भगवान के सारे कार्य आम सामान्य व्यक्ति के लिए भ्रम में डालने वाले, विडंबना में डालने वाले हैं। अब प्रभुपाद जी एक श्लोक लिख रहे हैं, वेदेषु अदुर्लभम, वेदों में पढ़ने से इस भगवान की इन लीलाओं को समझना दुर्लभ है, पर आत्म भक्त जो भगवान के अपने शुद्ध भक्त हैं उनके लिए ये समझना बहुत आसान है। वेदेषु अदुर्लभम, दुर्लभम आत्म भक्त, ये प्रभुपाद जी श्लोक को लिखते हैं। भगवान के भक्त सुखदेव जैसे बड़े बड़े महर्षि ब्रह्मा आदि जब आप वाराह के अवतार में आते हैं तो भी आपकी प्रार्थना करते हैं, मत्स्य अवतार में आते हैं तो भी ऋषि आपकी प्रार्थना करते हैं, और तब भी आपको वो परम पुरुष भगवान ही समझते हैं। अब कुंती महारानी उमावस के दिवाली के दिन गोकुल में गई हुई है और उसी दिन दामोदर लीला भगवान की घटित हुई है और यशोदा माँ ने कृष्ण को बांधने का कार्य किया और कुंती ने उसको देखा है ऐसे लग रहा है, और कुंती उस लीला का स्मरण करके क्या कह रही है, गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम ताव याते दशाश्रो कलिलांद्र संभ्रमाक्षम वक्त्रम ननीय भय भावनया स्थितस्य सामाम विमोयति भी अपि यदभिभेति। गोपिया यशोदा आदधे त्वयि कृतागसी, आपने की शरारत, आपने तोड़ा दही का मंथन करने वाला भांड मटका, कृतागसे का मतलब आपने किया अपराध, तो आपने त्वयि आपने अपराध किया, उसने आपको पकड़ लिया, आदधे पकड़ लिया, दाम रस्सी के साथ, तावद याते ददर्शु उसको देखा रस्सी लेकर आपको पकड़ने के लिए लाठी लेकर हाथ में आई, कलिलांजन तो अश्रु आपके आंखों से आंसू बहने लगे, सचपच जैसे रो रहे हैं आप बच्चा, और कलिलांजन और जो काला काला काजल आपकी आंखों में था वो आंखों से नीचे बह के आने लगा, संभ्रमाक्षम आपकी आंखें जो है वो बड़ी भयभीत लग रही थी, वक्त्रम निनय आपने मुंह नीचे कर लिया, भय भावना ऐसे लग रहा था कि मां से आप थर थर कांप रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं और आप भयभीत हैं, समाम विमोहते उसने तो मुझे बड़े मोह में डाल दिया, मैं जानती हूं भी अपि यत विभेति भय साक्षात जिससे भयभीत होता हो, जो काल का भी काल हो, भय जिससे भयभीत होता हो, वो एक गोपी के हाथ में रस्सी और लाठी देखकर भयभीत हो गए, मेरे को तो ये बड़ा विमोहित हो गई मैं, मुझे उसने आश्चर्य में डाल दिया। हे प्रिय कृष्ण, कुंती महारानी, हे प्रिय कृष्ण, यशोदा मैया ने रस्सी उठा ली आपको बांधने के लिए जब आपने अपराध किया कृतागसम, तब आपके भयभीत आंखों से बहते हुए अंजन काले काजल से मिश्रित अश्रु और सर आपका भय के कारण झुका हुआ और आप सचमुच ऐसे भयभीत थे वास्तव में कि मैं तो बहुत बड़ी विष में पड़ गई कि भय जिससे भयभीत है, रणभूमि में कोई वीर आप जिसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, सुदर्शन चक्रधारी मैया के रसी से डर के भयभीत होके कांप कर रहे हैं, रो रहे हैं, बड़ी विडंबना है भगवान आपकी लीलाओं की, ये तो मैंने ये लीला आंखों से देखी। चक्रवर्ती की बात लिख रहे हैं कि क्योंकि मैंने तो आपकी लीलाओं का रसास्वादन किया है और ये लीला मैंने आंखों से देखी है, आपने जब मंथनी वो मटका दधि का जिसमें मैया मंथन कर रही थी उसको तोड़ा था, अपराध किया था, यशोदा कृतागसी आपके अपराध के ऊपर रस्सी से आपको कमर में बांध रही थी, उस वक्त आश्चर्य है कि आप सर नीचे झुकाकर आंखों को मसल मसल के काजल के साथ अश्रु बहा के और बड़े भयभीत थे और आपको ऐसे लग रहा था कि मैया आपको दंडित कर रही है, ताड़ना कर रही है और आप उससे डर रहे हो, ये बड़ा आश्चर्य है, भय आपसे भयभीत होता है, यशोदा का इतना प्रेम था कि उसके प्रेम के सामने आप इतने भयभीत हो गए मां के प्रेम के सामने कि आपकी भगवत्ता आपको भूल गई। और यशोदा का प्रेम नंद बाबा से भी अति अधिक है, क्योंकि उसने आपको अपने बस में कर लिया। कुंती जब ये कह रही है कि भय आपसे भयभीत है, इसका अर्थ है कि कुंती महारानी भगवान की महिमा को और शक्ति को जानती है। इसका मतलब कुंती महारानी वात्सल्य प्रेम की भक्त तो है, लेकिन ऐश्वर्य युक्त है, ऐश्वर्य उसके साथ मिला हुआ है। लेकिन यशोदा वो भगवान को मुख में विश्व रूप देखने के बाद भी उसको अपना बच्चा ही मानती है, उसके अंदर ऐश्वर्य आते हुए भी छुप जाता है। और मधुर्य बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कुंती समझ रही है कि वो सचपच डर रहा है, कि कृष्ण सचपच वास्तव में डर रहा है। और ऐसे भी नहीं है कि डरने का नाटक कर रहा है, वो वास्तव में डर रहा है, इसलिए विडंबना है, इसलिए भ्रम में पड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि ये ऐसा नहीं है कि भगवान कोई दिखावा कर रहा था, नहीं। जब भगवान जो लीला करते हैं उसी लीला में पूरी तरह से रम जाते हैं, और उस वक्त भगवान अपने आप को भी भूल जाते हैं। ये भगवान की लीला शक्ति भगवान को भी भुला देती है। जैसे कोई ड्रामे का डायरेक्टर भगवान है, लेकिन जब स्वयं अभिनेता बनते हैं तो भूल जाते हैं, और उस वक्त वो वैसे ही काम करते हैं जैसे उनको करना होता है। तो यहां श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये विडंबना का दूसरा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण की लीला से कुंती महारानी दे रही है कि भगवान सब परिस्थितियों में भगवान ही है, परंतु फिर भी ये जो एक उदाहरण दिया जा रहा है भगवान की बाल लीलाओं का, जो शुद्ध भगवान के भक्त होते हैं वो ऐसा भगवान से प्रेम करते हैं कि भगवान उनके प्रेम के सामने अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं। और भगवान जब ऐसे भगवता को भूल जाते हैं तो भक्त भी आनंद लेता है और भगवान भी आनंद लेते हैं। और यही तो लीला का रस है। और इसमें ऐश्वर्य को कहीं स्थान नहीं है, भगवत्ता तो नजर ही नहीं आती है। प्रभुपाद कहते हैं सामान्य लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं वो बड़े ऐश्वर्य की, भगवान की महानता को जानते हुए भक्ति करते हैं, परंतु शुद्ध भक्त जो होते हैं वो तो भगवान की महानता को नहीं जानते हैं, अपने से छोटा समझते हैं। जैसे भगवान के सखा हैं उनको बराबर समझते हैं, माता पिता कहते हैं छोटा बच्चा है, हम नहीं खिलाएंगे तो खाएगा कैसे, सुलाएंगे नहीं तो सोएगा नहीं। भगवान पूरे विश्व को चलाने वाले को, खिलाने वाले को मैया कहती है मैं खिलाती हूं तब ये खाता है। तो ये बड़ा माधुर्य रस है। तो गोकुल में, वृंदावन में प्रभुपाद जी लिखते हैं जो भगवान के लीलाएं हैं अपने सखाओं के संग या माता पिता के संग या गोपियों के संग, वहां लिखा है गोपियां जब भर्सना करती हैं तो भगवान को वेद की ऋचाओं से अच्छी लगती हैं। गोपियों का उल्हाना देना, भगवान की भर्सना करना, ग्वाल बालों का भगवान से अड़ जाना, भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। वेद के ऋचाओं से, पाठ से इतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना अपने प्रेमी भक्तों के डांटने में भगवान को सुख मिलता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए और भीमसेन उनसे, द्वारका में थे और भीमसेन उनसे मिलने चले गए, तो भगवान ने बाहर सेवाधारी को बोला अभी कृष्ण थोड़ी देर बहुत बड़े काम में है, भोजन कर रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए। भीमसेन 1 मिनट रुका, 2 मिनट रखा, फिर सीधा अंदर जाके कहा, मेहमान घर में आया है, बड़ा भाई हो तुम, मुझसे पहले भोजन कैसे कर रहे हो, आप लोगों को मर्यादा नहीं है, ऐसे डांटने लगे। भगवान हंसने लगे, बोला यहां इतनी पूजा करते हैं द्वारका में, सब द्वारकाधीश कहते हैं, कोई डांटने वाला नहीं है, मैंने सोचा आज बड़ा भाई भीमसेन आ रहा है, जरा इसके प्रेम की डांट खा के थोड़ा सुख ले लूं, मीठा खा खा के, कुछ नमकीन खाने की इच्छा हो रही थी, हम कैसे आपके बगैर भोजन करेंगे, चलो अंदर अंदर भोग लगा आरो रखा हुआ है, चलो चलो भोग साथ खाएंगे। तो ऐसे भगवान को अपने भक्तों से, ये है माधुर्य के भक्तों की बात करते हैं। पांडव भी ऐश्वर्य से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन यहां जो ब्रज के भक्त हैं उनकी बात हो रही है। तो यशोदा जब बांध रही थी तो वो मक्खन का मटका लेकर, वो क्यों बांध रही थी, एक तो टोड़ा टोड़ा था और दूसरे मटके का मक्खन ग्वाल बालों में और बंदरों के, और बंदरों के लिए प्रभुपाद ने शब्द लिखा है सेलिब्रेटेड मॉन्कीज, सेलिब्रेटेड मॉन्कीज ऑफ द वृंदावन, वृंदावन के वानर जो हैं ये भगवान के मित्र हैं, भगवान ने इनको अपने हाथों से मक्खन खिलाया है। तो यशोदा के प्रेम से भगवान बंध गए थे और रो रहे थे कृष्ण। कुंती देवी इसको देखा सब, लेकिन कुंती में ऐश्वर्य का भाव है तो यशोदा के समान वो भगवान को वश में नहीं कर सकती, उसके अंदर ऐश्वर्य का भाव है, यशोदा में ऐसा भाव नहीं है, इसलिए कुंती से यशोदा का स्थान बहुत ऊपर है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। भगवान होते हुए भी न भगवान कभी अपने आप को भगवान कहते थे और न कभी यशोदा उसको भगवान मानती थी। अगर यशोदा समझती कि भगवान है तो थोड़ी उसको बांधती रस्से में। इसलिए इसी प्रसंग में लिखा है कि जो यशोदा को सौभाग्य प्राप्त हुआ न शंकर को हुआ, न ब्रह्मा जी को हुआ, न लक्ष्मी को हुआ। ब्रह्मा जी भगवान के अंग से उत्पन्न हुए हैं, शंकर सदा भगवान के ध्यान में, लक्ष्मी भगवान के चरणों पे, उनको ये सौभाग्य कभी नहीं मिला जो इस गोपी को मिला। न ब्रह्मा जी भगवान को बांधने का साहस कर सकते हैं, न शंकर और न लक्ष्मी बांध सकती है, लेकिन गोपी ने प्रेम से बांध लिया। तो इसमें यशोदा मैया की महिमा को गाया गया है और भगवान की लीला लोगों को विस्मय में डालने वाली है, ये सुनाया गया है। अब 32वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। अब 32वें श्लोक से भगवान के अवतार के नाना कारण बता रही है कुंती महारानी। केचिदाहो अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदोहो प्रियस्या नव्याय मल्यायस्य एव चंदनम। कुछ लोग कहते हैं केचिद आहु, कुछ लोग कहते हैं अजम अजन्मा, जातुम जन्म लिया, पुण्य श्लोकस्य कीर्ति है, पुण्य श्लोक की कीर्ति के लिए। तो ये पुण्य श्लोक कौन है, तो हमारे तात्पर्य में हम पढ़ेंगे पुण्य श्लोक, एक श्लोक में दो को कहा गया है, एक नल पुण्य श्लोक, एक युधिष्ठर पुण्य श्लोक। प्रभुपाद जी लिखते हैं नल से तो श्री कृष्ण का कोई संबंध नहीं है लीला में, तो यहां पुण्य श्लोक है युधिष्ठर महाराज, जिसको राज सिंहासन पे बिठाने के लिए, धर्मराज को राजा बनाने के लिए, उसकी कीर्ति बढ़ाने के लिए, और कुछ कहते हैं यदोहो प्रियस्य, महाराज यदु के नाम को प्रेम से लोगों को, यदु का नाम सदा याद रहे, यदु वीर के रूप में, यदु श्रेष्ठ के रूप में, यदु नंदन के रूप में कृष्ण प्रकट हुए, तो उसकी प्रशंसा करने के लिए, उस कुल की कीर्ति के लिए भगवान आप प्रकट हुए हैं। फिर उदाहरण दे रहे हैं मल्यस्य एव चंदनम, चंदन तो सब जगह होता है लेकिन मलाया मलाया पर्वत का चंदन सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ऐसे आपने उत्तम श्लोक को और यदु की कीर्ति को, कीर्ति के लिए आपने अवतार लिया। कुछ लोग कहते हैं अजन्मा ने जन्म लिया, पुण्य कीर्ति के राजाओं की, पुण्य कीर्ति वाले राजाओं की कीर्ति बढ़ाने के लिए, और कुछ कहते हैं महाराज यदु के वंश के जो उनके भक्त थे उनकी महिमा के लिए आपने अवतार लिया है। और जैसे मलाया पर्वत के ऊपर चंदन चंदन नाम लेते हैं तो मलाया पर्वत याद आती है, कृष्ण नाम लेते हैं तो यदु कुल याद आता है, तो उस कुल की महिमा के लिए चक्रवर्ती पाद लिखते हैं। आपने यदुकुल में अवतार लेके युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति को बढ़ाया, इसलिए जैसे चंदन मलाया के पर्वत की महिमा बढ़ाता है ऐसे आपने युधिष्ठिर महाराज की महिमा को बढ़ाया। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं भगवान अगर आप अवतार नहीं लेते तो आपके इतने मधुर महिमामय लीलाओं का कैसे हमको आकर्षण लीला सुनने का सौभाग्य कैसे मिलता। आपके अवतार के तो बहुत से कारण हैं। पुण्य श्लोक युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, यह पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, ये कोई श्लोक है महाभारत के अंतर्गत संभवतः। तो पुण्य श्लोक जो है वो नल महाराज है और युधिष्ठिर महाराज है, तो यहां युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति बढ़ाने के लिए, हमारे पुत्र की कीर्ति बढ़ाने के लिए आपका अवतार है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान तो भौतिक जगत में अवतार लेते हैं तो सभी विस्मय में पड़ जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं, तो अजन्मा ने अवतार कैसे लिया। भगवद गीता में भगवान के अवतार लेने का कारण लिखा हुआ है कि वो भगवान है, सृष्टि करता है, पालन करता है, फिर भी अवतार लेता है, तो भगवान अजन्मा अवतार लेता है ये तो सिद्ध है। क्यों? भगवान अपने मुख से इस बात को सत्य भगवद गीता में कहते हैं, परंतु फिर भी उनके अवतार के नाना कारण है। जैसे गीता में तो अवतार का कारण लिखा है धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, भक्तों की रक्षा और असुरों का संहार। तो यहां कुंती महारानी कह रही है ये एक अवतार का कारण हम समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं युधिष्ठिर महाराज जैसे पुण्य श्लोक राजाओं की कीर्ति बढ़ाने के लिए आपने अवतार लिया, आपने पांडवों को, युधिष्ठिर को इस विश्व का राजा बनाकर प्रजा को सुख देने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आपने ये कार्य किया है। अब प्रभुपाद कहते हैं अगर धर्मात्मा राजा होंगे तो प्रजा सुखी होगी। इस वक्त कलयुग है, राजा धर्मात्मा नहीं है तो प्रजा दुखी है, निरंतर दुखी रहेगी प्रजा। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं ये जो आप लोकतंत्र है उसमें लोकतंत्र में पुण्यहीन लोग जिनका कोई पुण्य नहीं है वो अपने से ही कोई एक पुण्यहीन व्यक्ति को चुन लेते हैं और फिर दुख भोगते हैं तो किसी को दोष क्यों देंगे। प्रभुपाद जी कभी कहते थे डेमोक्रेसी मीन्स डीमन्स कर्स, डेमोक्रेसी इज डीमन्स कर्स। एक विश्वविद्यालय के कुलपति के मत का उतना ही महत्व है जितना एक अनपढ़ के मत का महत्व है। एक वे एक एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का या सिविल सर्जन का मत और एक कैंसर का रोगी जो एक दिन में मरने वाला है उसके मत का वैल्यू एक जितना है। तो ऐसे मत देने वाले कौन होने चाहिए जिसके, पहले तो राजा महाराजों को अभिषेक करने वाले वो पुण्य ब्राह्मण हुआ करते थे, तो वो उनके द्वारा चुने हुए राजा थे, तो उनको दोनों सुख, क्योंकि वो पुण्य लोग चुनते थे तो पुण्य श्लोक राजा होते थे तो लोगों को सुख मिलता था। अब ऐसे वो दारू की बोतल पी के वोट देने वाले हैं, दारू पीने वालों को चुनते हैं और फिर सारे ही दुख भोगते हैं। प्रभुपाद जी ऐसे इस भाव को यहाँ कह रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि आपने यदुकुल की महिमा बढ़ाने के लिए, आपका नाम यदुकुल में आए तो यदुवीर हो गया, यादव हो गया, यदुनंदन हो गया। भगवान इन सब उपाधियों से ऊपर है, फिर भी इन सबको महिमा दे दी, नाम इनसे इन समाज का नाम बढ़ गया, यदुकुल श्रेष्ठ हो गया। अब इसको उदाहरण को कहते हैं, जैसे मलाया पर्वत के चंदन की महिमा होती है, ऐसे ऐसे कुल में भगवान का प्रकट होना उस कुल की महिमा बढ़ाता है। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं बस। कुछ लोग कहते हैं, अपरे वासुदेवस्य देवकयाम याचितो भ्यज्ञा अजस्त्वम अस्य क्षेमाया विधाय चा सुरद्वेषम्। अपरे दूसरे लोग कहते हैं, वासुदेवस्य आपके पिता वासुदेव देवकयाम और देवकी याचितो आपको प्राप्त करने के लिए बड़ी तपस्या करी, और व्यगात आप उनके लिए उनके यहां पुत्र के रूप में अजस्त्वम आप अजन्मा होते हुए भी प्रकट हुए। क्यों? अस्य क्षेमाय वधाय च, क्षेमाय उनके उनकी उनका भला करने के लिए, उनका हित करने के लिए, वधाय और वध करने के लिए। किसका? सुर द्वेषाम, जो देवताओं के द्वेषी है उनका वध करने के लिए आप प्रकट हुए। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, कुछ कहते हैं वसुदेव और देवकी ने प्रार्थना की आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाह, निश्चित रूप से आप अजन्मा होते हुए भी उनके हित के लिए प्रकट हुए, और सुर द्वेषो देवताओं के द्वेष से द्वेष करने वालों का वध किया। क्यों उनके पुत्र हुए? बोले संसार की रक्षा करने के लिए और असुरों का वध करने के लिए। अभ्यज्ञात यहां वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं, और जब सुतपा और पृष्णी थे तो उनके पुत्र में पहले आप हुए, अब वसुदेव और देवकी के पुत्र हुए, ऐसे नाम लिखा है। और श्रील प्रभुपाद ने यही भाव लिखा है कि ये आपके अवतार का कारण है। अब तीसरा अवतार का कारण आगे लिख रहे हैं, भारावतारवणाय भुविनाव एवोधौ सीदंतया भूरि भारेण जातो हि आत्म भुवारथितः। कुछ लोग कहते हैं भार अवतारणाय भुवो, भूवि पृथ्वी का भार उतारने के लिए, जैसे नाव के अंदर ज्यादा भार हो और नाव डूबने लगे, ऐसे पृथ्वी के ऊपर आतिताई राजाओं का भार बढ़ गया था, उस भार को उतारने के लिए भूरि भारेणा सीदंतया, सीदंतया बड़ी दुखी थी पृथ्वी, भूरि भारेणा बड़े अत्याचारी राजाओं के भार से, इसलिए आपने अवतार लिया। आत्म किसके कहने के ऊपर? आत्मभो, आत्मभू कहते हैं, ब्रह्मा जी ने आपको प्रार्थना की, अर्हते ही उसने आपको प्रार्थना की। तो यह इस श्लोक का भाव कल देखेंगे, विशेष रूप से प्रभुपाद का तात्पर्य है आत्मभू के ऊपर, ब्रह्मा जी कैसे प्रकट होते हैं, तो ये कथा कल करेंगे। हरे कृष्ण। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।